के इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का और अतिथियों का हार्दिक स्वागत। हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय के बीच में हम रविवारीय सत्संग कार्यक्रम मनाते हैं। इस कार्यक्रम में 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन होता है, 11 से 12 बजे तक प्रवचन होता है, 12 से 12:30 श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होता है और 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद होता है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे साथ प्रवचन देने के लिए आए हैं श्रीमान रसिक गौर हरि प्रभु। रसिक गौर हरि प्रभु इस्कॉन संस्था से 2002 में जुड़े। उन्होंने अपना डेंटिस्ट्री का BDS का डिग्री नायर हॉस्पिटल से कंप्लीट किया है। उसके पश्चात 2009 में वे इस्कॉन चौपाटी, जो हमारा इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ पर ब्रह्मचारी के रूप में सेवा देने लगे। 2010 में वे गोवर्धन इको विलेज आए। यहाँ आने के पश्चात पिछले 11 सालों से वे किचन की सेवा संभाल रहे हैं, साथ ही साथ पिछले 4 साल से वे गिफ्ट शॉप संभालते हैं और अभी 1 साल से वे गेस्ट जो अतिथि रहते हैं उनको प्रचार करने का सेवा कर रहे हैं। दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन वो प्रचार करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी हमें प्रवचन देने के लिए उपलब्ध है। प्रभु जी आज हमें श्री कृष्ण करुणा के सागर यह विषय पर मार्गदर्शन करेंगे, कथा करेंगे। तो प्रभु जी का पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोलकर हम स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृपया प्रवचन के अंत तक बने रहे, उसके पश्चात महाआरती और प्रसाद होगा।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारे, यमुना तीरावन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रतिपाद्यकाचार्य अष्टावतारस्य हिज डिवाइन गेज भक्ति सिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रतिपाद्यकाचार्य अष्टावतारस्य हिज डिवाइन गेज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय द्वारका धाम की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय समवेद गौर भक्तवृंद की जय ऑल गुरु इष्ट असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा All glories to Asimal devotees, Hare Krishna. All glories to Asimal devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Ena Bhutale Swayam Rupah Kadameyam Dadanti Svapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Utapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamcha Shri Rupam Sahagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakamitamisha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurat Vise Namaha Vancha Kalpataru Vesha Krupa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachat Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna. So, आप सभी भक्तों का और अतिथियों का यहाँ पे आज स्वागत है आज संडे प्रोग्राम में. तो आज का हमारा चर्चा का विषय है भगवान श्री कृष्णा करुणा के सागर. तो हम देखते हैं करुणा मतलब दया, हम बोलते हैं ना दया है या अनुकंपा कोई जो दिखाता है. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 10वें अध्याय में उनके महानता के बारे में बताते हैं. तो वो अध्याय का नाम है ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट. उनकी महानता क्या है मतलब वो बताते हैं वहाँ पे कि जो भी दुनिया की चीज़ें हैं उसमें वो क्या है, महत्तम चीज़ क्या है. वो जैसे बोलते हैं कि जो अचल है, अचलों में मैं हिमालय हूँ जो जिसको कोई हिला नहीं सकता. और बताते हैं कि पक्षियों में मैं कौन हूँ, गरुड़ हूँ. और वृक्षों में मैं अश्वत्थ ट्री हूँ, अश्वत्थ मतलब जो वट वृक्ष है. तो जो सबसे हर चीज़ों में सबसे ऊँचे जो बड़े है, जो उसको प्रोमिनंस है वो क्या है, तो वो भगवान, उसको भगवान को दर्शाता है जो भी प्रोमिनंट चीज़ है. तो वैसे वो बोलते हैं कि जो जो पानी का जो स्रोत है, पानी के जो जैसे बोलते हैं कि नदी है कुछ है, तो सबसे बड़ा पानी का जो जैसे हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे जमा होता है पानी जैसा, तो सबसे ज़्यादा क्या है सबसे बड़ा दुनिया में, सागर. तो बोलते कि सब जलाशयों में मैं सागर हूँ, जो भी जलाशय है उसमें मैं सागर हूँ, यानी समुद्र बोल सकते हैं हम. तो वैसे ही हम इस दुनिया में देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के से करुणा दिखाते हैं लोगों के ऊपर. जैसे हम देखते हैं बहुत सारे धनी लोग जो होते हैं वो जैसे कपड़ा बांटते हैं या फिर अन्न दान करते हैं, मेडिसिन जो है औषधि देते हैं गरीबों को, और बहुत कुछ जो है वो दान करते हैं, तो वो एक प्रकार की करुणा दिखा रहे लोगों के ऊपर। तो लेकिन अगर हम कंपेयर करें ये दुनिया की करुणा और भगवान की करुणा, तो उसमें उतना अंतर है कि जैसे एक छोटा सा जलाशय है और सागर है, उसमें जितना अंतर है वैसे ही इस दुनिया की जो हम करुणा लोग जो करुणा करते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें और भगवान की करुणा में उतना उससे ज़्यादा अंतर है। तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए सिर्फ सागर ही है, भगवान की करुणा तो उससे बड़ी है। तो वैसे हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक जैसे अगर कोई आदमी जा रहा है रेलवे स्टेशन पे है और उसने एक कोई बच्चे को देखा जो बहुत ही दयनीय अवस्था में, कपड़े फटे हुए हैं, कुछ चोट आई हुई है, ऐसा लग रहा है कि दो तीन दिन से कुछ खाया नहीं है, और वो मनुष्य उसको देख के पता उसको चल गया कि इसको मैंने कहीं देखा है, और फिर उसको याद आता है कि अरे ये तो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति का लड़का है, लेकिन कैसे तो ये अभी यहाँ पे गुम गया है। तो वो आदमी क्या करेगा, वो लड़के को उसको पहचान दिया तो अपने घर पे लेके जाएगा, उसको अच्छे से नहलाएगा, खाना पीना खिलाएगा, उसका जो दवा कुछ करना है वो करेगा, और क्या करेगा बाद में अच्छा कपड़े देगा, और बाद में रेलवे स्टेशन पे लाके छोड़ देगा। ऐसा करेगा क्या करेगा, जो उनके पिताजी है जो अमीर है उनके पास दे देगा, उनके पास लेके जाएगा, जो उनका उससे ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम भी ये दुनिया में जो है भगवान के जो हम सब जो है पुत्र है जो भटके हुए हैं, और हम एक दूसरे को दया दिखा रहे हैं ये दुनिया में, वो दया उस प्रकार की है जैसे थोड़ा बहुत हम किसी को दे रहे हैं लेकिन बाद में उसको वापस रेलवे स्टेशन पर जाकर छोड़ रहे हैं। जैसे कोई अभी आज कोई अन्नदान करेगा कुछ करेगा, अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा है वो करना, अच्छा है, कपड़ा दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहा है, वो बुरी चीज़ नहीं है, दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर उनको उनके जो ओरिजिनल जो जो सबके माता पिता है उनका अगर पता भी बता देंगे, उनके बारे में ज्ञान भी देंगे कि हमारे ओरिजिनल माता पिता कौन है, तो सबसे बड़ी करुणा कही जाएगी। तो इसलिए जो ये अंधकार है दुनिया में, जैसे इसको अज्ञानता बोलते हैं, ये अज्ञानता के कारण हम लोग सब यहाँ पे दुखी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कौन है। सब लोग समझते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा लोग समझते हैं ज़्यादा लोग कि हम कौन है, ये शरीर है और हम आत्मा है, ये समझते नहीं है। अगर समझेंगे भी तो सिर्फ सुन के, हाँ हम आत्मा ऐसे बोलते हैं लेकिन आत्मा के स्तर पर कोई भी बर्ताव नहीं करते। हम जो भी करते हैं देखते हैं क्या करते हैं, सब शरीर के लिए सब कुछ किया जाता है, शरीर को कैसा अच्छा स्वस्थ रखना है जरूरी है, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है, उसके लिए करते हैं। उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफाई कैसा करना है, बालों का अलग अलग कैसे ब्यूटी पार्लर में जाके या फिर जो भी केस अलग अलग स्टाइल बनाना है, खुद को कैसे सुंदर बनाना है, कॉस्मेटिक कैसे यूज़ करना है, ये सब हम देखते हैं, ये सब किया जाता है। लेकिन आत्मा जो हम खुद है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो जो है वो अगर ज्ञान हमें मिलेगा तो ही हम जो है जो दुनिया का जो अंधकार है उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान जानना बहुत जरूरी है, उसके अलावा उसके बिना हम जो है ये जब तक हमें अज्ञानता से बाहर निकलेंगे नहीं तब तक हम सही तरीके से खुश नहीं रह सकते। सब तो खुश रहना चाहते हैं ना, ऐसा कोई है जो सोचता है कि मैं बहुत हुआ एक साल हो गया एक भी दुख नहीं आया मेरे जीवन में, थोड़ा दुख दे दे भगवान, ऐसा कोई बोलता है क्या? या फिर मैं बीमार नहीं हुआ बहुत साल हो गए, थोड़ा बीमारी आएगा तो थोड़ा हॉस्पिटल जाके थोड़ा सोऊंगा तो मेरा थोड़ा सब लोग मुझे देखने आएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा तो कोई सोचता नहीं ना। किसी को मरना नहीं है, किसी को बीमार होना नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि किसी को बूढ़ा होना है, किसी को कि बहुत हो गया अभी 30-40 साल हो गया मैं जवानी हूँ, बूढ़ा होऊंगा तो थोड़ा अच्छा एक जगह पर बैठा रहूंगा तो सब लोग मेरा आशीर्वाद लेने आएंगे बूढ़ा है तो ऐसा कोई बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता, क्योंकि वो हमारा नेचर नहीं है बूढ़ा होना और बीमार होना, ये हमारा नेचर नहीं है। सब लोग क्या है, सब लोग खुश रहना चाहते हैं। ये बच्चों को थोड़ा कौन साथ में है, उनको थोड़ा चुप कराइए, इनके साथ में कौन है? तो जो है हमारा वो नेचर ऐसा है, हमारा मतलब आत्मा का नेचर है कभी ना मरना, कभी ना बूढ़ा होना। तो भगवद गीता में भगवान वही बताते हैं, दूसरे अध्याय में चालू करते हैं कि न जायते ना मृयते ना कदाचित ना भूतवा भयिता ना भूय ना हन्यते हन्न माने चरिले, कि जब ना भविष्य में ना भूत में ना प्रेजेंट में हमको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ये शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा अमर है। तो हमारा वो जो है हमारा वो नेचर है, हमारा वो वास्तविकता है, इसलिए हम वो चाहते हैं। तो इस कारण जो है, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तब तक हम जो है इस अज्ञान से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अभी हम इस भौतिक संसार में जो है झुलझ रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो है इसमें हम झुलझ रहे हैं। हम बोलते हैं कि हम वैज्ञानिक जो जो भाई हम बहुत प्रगति किया है विज्ञान में, लेकिन क्या विज्ञान ने जन्म रोक पाया है किसी का? क्या हमारे हाथ में हमारा जन्म है? हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है, ना किसी का मृत्यु रोक पाए अभी तक, ना किसी का बीमारी, बीमारी मतलब टेम्पररी उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बीमारी को समाप्त करते हैं तो 10 नई बीमारी आ जाती है, और ना बुढ़ापे को रोक पाते हैं। तो ये सब जो हम सोचते हैं वैज्ञानिक जो हमारा जो आगे हम बढ़े विज्ञान में, तो ये जो विज्ञान में आगे बढ़े हैं तो किस चीज़ में बने बढ़े हैं आगे? सिर्फ आहार निद्रा भय और मैथुन, जो प्राणी भी करते हैं, खाना और उसके बाद निद्रा सोना, भय खुद का रक्षण करना और मैथुन रिप्रोडक्शन, तो ये चार चीज़ें हैं। वो तो प्राणी में भी होता है और वही आदमी इंसान में भी है, ये कॉमन है। लेकिन जो इंसान जो जो जानवर है उनसे हम में ज़्यादा बुद्धि है, तो ये बुद्धि का हमें जो है इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए वो हमें शास्त्र बताता है कि हमारा क्या है। जैसे महाभारत में श्लोक आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशु भी समान। कि आहार निद्रा भय मैथुन खाना मतलब आहार निद्रा सोना भय खुद का रक्षण करना मैथुन रिप्रोडक्शन, ये जो चार चीजें है सामान्य एतत् पशु भी नरानाम, पशु जो जानवर है और नर ह्यूमन से उसमें समान है। खाना सबको पता है वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, सोना देन खुद का रक्षण करना और प्रजनन ये कॉमन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, हम में धर्म विशेष है, उस उन लोगों में धर्म नहीं है जो एनिमल्स है, उनका बुद्धि सिर्फ चार चीज़ों में चलेगा। आपने कभी देखा है कोई कुत्ते बैठे हैं और भागवतम कुछ कथा कर रहे हैं, भगवद्गीता का कथा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कभी देखा हमने? नहीं देखा। वो सिर्फ चार चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनको बुद्धि है लेकिन चार चीज़ों का बुद्धि है, लेकिन हमारा बुद्धि है चार चीज़ों से परे चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग उसको चलाते नहीं हैं। ये चार ही चीज़ों में हम उसका बुद्धि चला हमारा बुद्धि चलाते हैं, इसलिए जो ये सिर्फ चार चीज़ों में बुद्धि चलाता है उनको कहा जाएगा फिर द्विपद पशु, जिनके दो पैर है, बाकी एनिमल के चार और ज़्यादा पैर है, लेकिन हमारे कितने हो गए फिर? अगर हम ये चार चीज़ें करेंगे तो दो पैर, सिर्फ सूट बूट पहनना, गाड़ी में घूमना, बंगले में रहना, एयरप्लेन में उड़ना, इससे कोई आदमी नहीं बनता है। जब हम ये चार चीज़ों से परे जाके हम अगर हम जानेंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तभी हम जो है ह्यूमन स्तर पे आ सकते हैं। तो यही बताने के लिए जो है भगवान उन जो है अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से हमें समझाना चाहते हैं, तो उनकी करुणा है, इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम सब लोग जो उनके बालक के समान हैं वो उनके पास वापस आ जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी करुणा दिखाते हैं। जैसे इस दुनिया का, जैसे मैंने बताया कि करुणा है इस दुनिया में लोगों में, लेकिन वो टेम्परेरी बॉडी लेवल पे है, परमानेंट नहीं है। वो परमानेंटली किसी को हम खुश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एक दिन खाना खिलाने के बाद दूसरे दिन भी भूखा होने वाला है, तो ये तो जन्म के बाद चलता रहेगा। तो यहाँ से सीधा बाहर निकल के जो 84 लाख अलग अलग योनियों में हम घूमते हैं, इससे बाहर निकल के हमें वापस भगवत धाम जाना है, जहाँ पे जन्म मृत्यु और जरा व्याधि ये कुछ भी नहीं है। तो वो रियल जो है हम सोच सकते हैं उसके बारे में कि वो रियल कंपैशन है, वो रियल करुणा है। तो वो भगवान अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान जो है ये करुणा को दिखाते हैं। तो हम 5 प्रकार से देखेंगे इसमें, कि जैसे पहला है कि वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है भगवान। भगवान बोलते भगवद्गीता में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते ब्राह्मयान सर्वभूताना भूतानी यंत्र रूढ़ानी माया। क्या बोलते हैं? ईश्वर सर्व भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते, हमारे हृदय जो है वहाँ पे हम खुद है, जो हृदय के जो जगह है वहाँ पे आत्मा का निवास है और वहाँ पे परमात्मा का भी निवास है। और ये परमात्मा जो है हमारे साथ हर जो भी हम शरीर प्राप्त करते हैं, सिर्फ ह्यूमंस का नहीं, सिर्फ आदमी का नहीं, जो भी चींटी का हो या कोई भी अलग जानवर, इवन जैसे कोई कीड़ा है जो भी किसी के विष्ठा में कीड़ा भी रहता है, तो उसके अंदर भी परमात्मा है। तो हम जैसे अलग अलग ये देखते हैं ये दुनिया में, जैसा LIC बोलते ना लाइफ इंश्योरेंस का कवर, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन जीवन के बाद किधर आने वाला है, अब किसके साथ आने वाला है, लेकिन सिर्फ भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ जीवन के बाद भी है, ये मनुष्य जीवन के बाद भी है। कोई हमारे सब जो हमारे रिलेटिव है, घर वाले हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन सबका जो है एक जो है एक तरीके से, मतलब आप बोल सकते हैं कि हमेशा के लिए हमारी हेल्प नहीं कर सकते, एक दूसरे को हम हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग जो है एक बार एक दिन तो मरना है सबको, तो बिछड़ जाना है। कितना भी अगर हम मन से माता पिता अपने बच्चों का हेल्प करना चाहेंगे या बेटे अपने माता पिता का हेल्प करना चाहेंगे, लेकिन कोई किसी को एक लिमिट के परे हेल्प नहीं कर सकते, एक लिमिट है उसके परे हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जो है हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा जिस भी योनि में हम जाते हैं, चाहे वृक्ष की योनि हो, कुत्ता बिल्ली शेर पंछी हो, चाहे जलचर कोई प्राणी हो, चाहे छोटा बैक्टीरिया हो, हर योनि में भगवान हमारे साथ है, तो वो रियल लाइफ इंश्योरेंस कवर है हमारा, बोल सकते हैं हम कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और तो एक इसका एक उदाहरण भी देते हैं शास्त्रों में कि जैसे परमात्मा, जैसे शरीर जो है एक वृक्ष को समान इसको कंपेयर किया गया है, शरीर जो है वृक्ष के समान है और उसके ऊपर एक जो डाली है उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, दो पंछी बैठे हुए हैं, एक है आत्मा जो हम है और दूसरा है परमात्मा। तो एक जो हम है वो अलग अलग जो फ्रूट है वो पेड़ के ऊपर जो फल है उसको खा रहे हैं, कभी जो फल है मीठा है कभी खट्टा है, वैसे ही दुनिया में हम देखते हैं कभी खुशी है कभी गम है, तो अलग अलग प्रकार के फल हम खा रहे हैं। और जो परमात्मा है हमारे साथ में हमारे बाजू में बैठे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे हमें हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं हमको, और वो देख रहे हैं कि कब ये दुनिया से ये सब चीज़ों से थोड़ा समय निकाल के मेरे तरफ देखेगा, मेरा भजन करेगा, तो मैं इसको ये दुनिया से बाहर निकलने का जो है रास्ता दिखा पाऊंगा। तो हमेशा वो ऐसा सोचते रहते हैं और वहाँ पे वो हमेशा हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन हम ये दुनिया के अलग अलग फल जो है मीठे कड़वे खट्टे जो भी अलग अलग फल हमारे, ज़्यादातर तो मीठे नहीं रहते फल जो दुनिया में हम देखते हैं, हमें तो ज़्यादा दुखी है और जो है खुशी बहुत कम है, तो वो फल हम खा रहे हैं लेकिन हम जो परमात्मा है उनकी तरफ नहीं देख रहे, हमें लगता है कि हम खुद ही इससे कुछ करके इसे बाहर निकलेंगे, चलो आज मैं थोड़ा दुखी हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूँगा तो मैं दुख से नया घर ले लूँगा, थोड़ा बड़ा गाड़ी ले लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा दुख का निवारण हो जाएगा, लेकिन तब तक क्या हो जाता है और कुछ आ जाता है, और ऐसा करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर राम नाम बाद में हम चले जाते हैं, तो दुख का निवारण करने में हमारा पूरा जीवन चला जाता है, हमें पता ही नहीं कि दुनिया, हमने कभी सीखा ही नहीं कि हमें ये जो मनुष्य जीवन है उसमें करना क्या है। तो लेकिन फिर भी भगवान एक मित्र के समान हमेशा हमारे साथ में है, तो वो उनकी करुणा है, तो ये करुणा का हमें देखना है कि किस प्रकार भगवान हमारे ऊपर करुणा करते हैं। उसके बाद भगवान जो है अलग अलग अवतार लेते हैं दुनिया में, अवतार क्यों लेते हैं, भगवान क्या बोलते हैं चौथे अध्याय में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सुजामि हम, और आगे क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो हर युग में भगवान अवतार लेके आते हैं, तो अवतार लेके क्या करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं, पास्ट टाइम है भगवान करते हैं, ताकि हम उनको देख के उनके बारे में सुन के उनके बारे में पढ़ के हम जान सके भगवान के बारे में, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो दुनिया भी हम दुनिया में देखते हैं कि हम जो है जो एडवेंचर की तरफ लोग बहुत जो है एडवेंचर रहते हैं उधर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मूवी अलग अलग जो सिनेमा है लोग देखने जाते हैं जिसमें सुपर ह्यूमन एक्ट्स दिखाया जाता है ना, जैसे स्पाइडरमैन है, बैटमैन है और बहुत सारे आयरन मैन है और ऐसे बहुत सारे मूवी हैं जो बनाते हैं जो कभी और हम देखते हैं, लोग जाते हैं देखने के लिए, कितने लोग देखते हैं और उसमें उनको आनंद मिलता है, क्योंकि दैट इज द नेचर, हमारा नेचर है कि सुपर ह्यूमन एक्ट्स की तरफ आकर्षित हो जाए, लेकिन वो जब हम ऐसी जो चीज़ें देखते हैं दुनिया की जो बनाई हुई हैं जो भगवान से संबंधित नहीं है, तो उससे हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है कभी, हम उल्टा इस मटेरियल जो भौतिक जो संसार है जो सागर है भौतिक सागर है उसमें हम और धसते जाते हैं अंदर, उसके अंदर धसते जाते हैं, उससे कभी हमारा जो है शुद्धिकरण नहीं होता। हमारा वो नेचर है लेकिन हम उसको जो है अलग गलत दिशा में लगा रहे हैं। लेकिन इसलिए भगवान क्या करते हैं, अलग अलग अवतारों में आते हैं और बहुत सारे जो सुपर ह्यूमन एक्ट्स करते हैं जो हम कोई कर नहीं सकता, जैसे कि मूवी में भी वो इतना नहीं दिखा सकते। जैसे कितनी सारी चीज़ें हैं भगवान करते हैं, जैसे समुद्र मंथन की लीला है, उसमें बहुत भगवान ने कितने सारे अवतार लिए हैं, उसमें से कुर्मा अवतार है। कोई अभी देखा है कि कोई मनुष्य उसके कुर्मा अवतार जो इतना बड़ा जो बहुत बड़ा जो पहाड़ है उनके जो पीठ के ऊपर मंथन हो रहा है और उनको लग रहा है कि उनके पीठ में कोई गुदगुली कर रहा है और वो सो रहे हैं। तो ऐसा कोई है आदमी जिसके शरीर के पीठ के ऊपर कोई पत्थर रखा हो, उसको रगड़ा जाए 100-200 किलो का पत्थर, तो मर जाएगा, सोने का बात नहीं है, तो मर ही जाएगा। ऐसे ही करते हैं। उसके बाद भगवान कालिया के ऊपर डांस करते हैं, कालिया नाग, किसके हजारों फन थे। तो ऐसा कोई कर सकता है, पॉसिबल है हजारों फन के? हम भी डांस करते हैं सांप को देख के, लेकिन भागते हैं, डांस करते करते भाग जाते हैं। एक फन का भी नाग देख लिया तो सिर्फ सांप सूढ़े, अगर कोई चिपकली भी गिर गई हमारे पास में, कुछ गिर गया तो हम भी भाग जाते हैं। लेकिन भगवान उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा कोई कर नहीं सकता, ऐसी वो चीज़ें करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। उसके बाद वो दावानल पी लेते हैं। क्या पीते? दावानल मतलब अग्नि, फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लगी है उसके अंदर गैया और उनके जो ग्वाल बाल जो सखा है वह अंदर अटके हुए हैं, उनको वहाँ से मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, अपने मुँह से अग्नि पी लेते हैं। और हम थोड़ा सा अगर कुछ खा रहे हैं, कुछ गर्म हो जाएगा तो हमारा तो जवान जल जाता है, हमको उधर दवाई लगाना पड़ता है, हम ये नहीं कर सकते। तो ऐसे कितनी लीलाएं हैं, जैसे वराहदेव, वराहदेव क्या करते हैं, पृथ्वी को अपने जो है सिंगों के ऊपर जो उनके ये है दांत है जो उसके ऊपर धारण करते हैं। तो ऐसे बहुत अनगिनत जो भगवान के पराक्रम है, लीला हम देख सुन सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। अगर इसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे तो क्या होगा, फिर हमारा जो है शुद्धिकरण होगा, हम उससे शुद्ध हो पाएंगे। तो लेकिन क्या है, हम इस दुनिया से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं दुनिया के लोगों से। इसलिए भगवान भगवद गीता में 4वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न इति माम इति सो अर्जुन। क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान बोल रहे हैं मेरे जन्म मतलब अवतार और कर्म, उनकी जो लीलाएं है जो कर्म करते हैं वो कैसे है, दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो इसको तत्वतः जानता है जैसा है वैसा, बिना कुछ मसाला डाले हुए। तो जैसे एक कुछ दिन पहले कोई गेस्ट आए थे, उनसे मैं मिला तो वो बोले कि मैंने तो टीवी पे देखा था कि महाभारत में ऐसा है, रामायण में वैसा है, लेकिन आप तो कुछ अलग बता रहे हैं। तो मैंने बोला जो टीवी में जो बना रहे हैं वो भक्त नहीं है, वो जैसे का वैसा प्रेजेंट नहीं करेंगे, वो उसमें थोड़ा मसाला डालते हैं ताकि लोगों को सामने वो पेश कर सके। अगर कच्चा कुछ दे दिया हमें खाने के लिए तो हम खाने पाएंगे, जैसा वैसा दे दिया तो खाने पाएंगे, तो हम मसाला डालते ना कुछ चीज़ों में। तो जब तक लोगों को मसाला डाल के कुछ खिलाने जाएगा लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जैसे जो हम टीवी पे देखते हैं वो 100% एज इट इज़ नहीं दिखाते, वो खुद का भी कुछ डालते हैं ताकि लोग उसको एक्सेप्ट कर सके। लेकिन अगर हमें वैसे का वैसे जानना है तो हमें प्रॉपर मेथड से जानना पड़ेगा, प्रॉपर परंपरा में जानना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म को, मेरे अवतारों को, मेरे जो एक्टिविटीज़ है, मेरे पास टाइम है, वैसे के वैसे जब जानेगा बिना किसी मसाला मार के, तो जो क्या होगा फिर, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नहीति। उसके बाद क्या होगा, फिर हम जब हमारा देह छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नहीति माम इति सो अर्जुन, और वो कहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। तो सिंपल है कि अगर हम भगवान के बारे में सोचेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। भगवद गीता में भगवान और बोलते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः यम यम वापि स्मरण भावम। हम जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, जब ये कलेवरम मतलब शरीर को छोड़ने के समय जिस जिस भाव का हम स्मरण करते हैं तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। वो कौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं, सदा तद भाव भाविता, तो उस भाव में हमेशा रहने के कारण हम उस शरीर को प्राप्त करते हैं। तो जिंदगी भर, जीवन भर जो हम प्रैक्टिस करेंगे वैसा ही हमारा मति रहेगा हम जब शरीर छोड़ेंगे, और जैसा मति रहेगा हमारा शरीर छोड़ने के समय वैसा ही हमारा गति होगा। तो सिंपल है समझने के लिए, एकदम सिंपल है कि जैसा मति रहेगा वैसा गति हो जाएगा। जैसा हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करते हैं साल भर, तो उसने अगर पूरा साल पढ़ाई किया अच्छे से तो जो फाइनल एग्जाम में है उसमें जाएगा तो अच्छे से लिख पाएगा। अगर उसने पढ़ाई नहीं किया तो उसको एग्जाम में बैठने के बाद कुछ याद आने वाला नहीं है, वो तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा, उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा क्योंकि उसने पढ़ाई किया ही नहीं है, तो अपने आप थोड़ी आएगा। तो वैसे अगर हमने हमारे पूरे जीवन में कुछ भक्ति नहीं किया, भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, तो मरने के समय किधर से याद आएगा भगवान? तो अगर भगवान का याद नहीं आएगा तो किसका याद आएगा फिर हमें? जो किया है, क्या किया है? दुनिया के बारे में सोचा है, दुनिया के चीज़ों में हम जकड़ गए हैं, तो क्या होगा? फिर हम वापस दुनिया में आ जाएंगे। तो इतना सिंपल है कि जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं कि एक आदमी था, उसका बड़ा कारोबार था कपड़े का, तो उसने पूरा उसके जीवन भर कपड़े का कारोबार किया और बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ा उसका दुकान था, और उसके बाद उसका बेटा भी बड़ा हो गया, वो भी उसको मदद कर रहा है कपड़े के कारोबार में। फिर बेटा और जो पिताजी थे वो नास्तिक थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, और बेटा था वो इस्कॉन में आता था, वो भगवान को मानता था। तो वो पिताजी को बोलते हैं कि आप पिताजी, आप अभी आपका बहुत उम्र हो गया है 60-70 साल, अभी आप जो है भगवान की भक्ति कीजिए, ये भगवान की भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो पिताजी बोलते हैं कि मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर वो एक साधु को बुला के लाते हैं और साधु को बोलते हैं कि आप थोड़ा मेरे पिताजी को ज्ञान दीजिए। फिर वो पिताजी से बात करते हैं, थोड़ा उनको भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद पिताजी में उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर साधु बोलते कि ठीक है, इनको मैं चार धाम यात्रा लेके जाता हूँ। फिर उनको चार धाम यात्रा लेके जाते हैं, चार धाम का यात्रा होके वापस आते हैं, तब बेटे को लगता है अभी तो कुछ पॉजिटिव हो गया रहेगा, कुछ फर्क पड़ा रहेगा। तो उसके बाद पिताजी बोलते हैं हो गया मेरे चार धाम, मेरा पांचवा धाम अभी मेरा दुकान है, अभी मैं उधर जाके बैठूंगा। तो उसके कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर बेटा और परेशान हो गया, फिर साधु को बोलता है कुछ तो कीजिए। तो साधु बोलते हैं कि ठीक है, और एक मैं आखिरी प्रयत्न करके देखता हूँ। तो उनको लेके जाते हैं वाराणसी, मणिकर्णिका घाट, शायद आप लोगों में से किसने सुना रहेगा, वहाँ पे एक मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे सैकड़ों जो है शरीर जो मर जाते हैं उसके बाद जो शरीर है जलाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे बोलते हैं जो मरता है उनके कान में आके शिवजी राम का नाम लेते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए बहुत सारे लोग अंतिम समय में उधर जाते हैं। और वो देखता है आदमी कि देखो कितने मतलब जो ऐसे बहुत सारे जो शव जल रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। तो उनको जब देखता है तो रोने लगता है वो, और उधर अपने घुटने पे बैठ जाता है और रोता है, बहुत रोता है। तो साधु को लगता है फाइनली इसको पता चल गया है कि जीवन का अंत सबको इधर ही आना है। तो अभी इसके जो है हृदय में कुछ तो परिवर्तन हुआ है। तो साधु आके उनको पूछता है कि बताइए आपका साक्षात्कार क्या है, इतना क्यों रो रहे हैं? तो बोलता है मैंने मेरा पूरा जीवन कपड़े के व्यवसाय में बर्बाद कर दिया। तो साधु को लगता है चलो उसको कुछ समझ गया अभी, अगर मुझे पता होता कि लकड़े का इतना डिमांड है तो मैं लकड़े का धंधा करता था। तो वो क्या देख रहा है उधर कि सब जलाने के लिए लकड़ा यूज हो रहा है, अगर मैं उसको प्रोवाइड करता था इतना सारा लकड़ा तो मुझे बहुत मुनाफा होता था। तो क्या देख रहा है वो, उसका जो बुद्धि में है वही देख रहा है जो उसने पूरा जीवन भर किया है। तो इसलिए जो है हम अगर जीवन को पहले से ही उसको बराबर से मोड़ेंगे, जब से हमें पता चले भक्ति करना चाहिए, तो हम उसको जो है प्रॉपर दिशा में ले जा सकते हैं, और तभी जो है हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। और ये चॉइस किसका है, भगवान का है कि हमारा है? भगवान तो है, अलग अलग चीज़ें हमें दे रहे हैं, परमात्मा के रूप में है, और इसके बाद अलग अलग अवतार लेके अलग अलग लीला भी कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमें करना क्या है। कि भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, वो बोलते हैं अपनी इच्छा से मेरे को अगर शरण आएगा तो अच्छा है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद पहले हमने देखा कि वो परमात्मा के रूप में आए हैं करुणा दिखाने के लिए, उसके बाद अलग अलग अवतार लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार आए चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि उनको हमने अलग से दर्शा रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कोई भी अवतार भगवान कृष्ण के जितने अवतार है उसमें से जो कोई नहीं दे सका वो भगवान किसने दिया, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। क्या दिया है, हरिनाम दिया है। क्योंकि अलग अलग युगों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग चीजें के ये है मार्ग है। जैसे सत्ययुग में तपस्या करना, तभी हजारों साल लोग तपस्या करते थे। बाद में त्रेता युग आया, त्रेता युग में यज्ञ करना, हवन करना भगवान की प्राप्ति के लिए वो था। उसके बाद आया द्वापर युग, तो द्वापर युग में क्या, मूर्ति पूजा, भव्य तरीके से मूर्ति पूजा करना वो भगवान प्राप्ति के लिए किया जाता था। और अभी आया कलियुग, तो कलियुग में क्या है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलो न अस्तेव न अस्तेव न अस्तेव गतिरन्यता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है इसमें बोला जाता है कि इति षोडशकम नामनाम कली कलमश नाशनम नतः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का महामंत्र क्या करेगा, सब कली के कलमश नाश कर देगा। नतः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सब वेदा को अगर हम छान माने मारेंगे, पूरा वेदा पढ़ लेंगे, तो इससे बड़ा उपाय हमें कहीं मिलेगा नहीं। आप लोगों में से कितने लोगों ने वेदा पढ़ा है, सब हमारे पास उतना, मैंने भी नहीं पढ़ा, तो अपना समय भी नहीं है, उतना बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा संस्कृत में है और हमें उतना समय नहीं है, उतना बुद्धि नहीं है कि हम पढ़ सके। लेकिन उसका सारांश जो है वो हमें मिला है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, समझ लीजिए हम डॉक्टर के पास गए, हमारा पेट दुख रहा है और डॉक्टर को बोल रहे हैं कि हमारा पेट दुख रहा है कुछ दवाई दीजिए, तो डॉक्टर ने हमें कुछ दवाई दिया, समझ लीजिए कि उन्होंने दवाई दिया, उसका कलर है पीला, पीला कलर का दवाई दिया, तो हम अगर डॉक्टर को बोलेंगे कि पीला कलर मेरा फेवरेट कलर नहीं है, मेरा ग्रीन कलर फेवरेट कलर है, तो आप मुझे ग्रीन कलर का दवाई दीजिए, तो बुद्धिमानी होगा क्या वो, क्यों क्यों बुद्धिमानी नहीं होगा, किसको ज़्यादा पता है, डॉक्टर को पता है ना, क्योंकि उसने पढ़ाई किया है, तो डॉक्टर को पता है कि कौन सा दवाई देना है। लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं, मैं अभी डॉक्टर बनूंगा और फिर पढ़ाई करूंगा 4-5 साल, उसके बाद ढूंढ निकालूंगा कि कौन सा दवाई सही है, तो वो बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है कि जिसने पढ़ाई किया है उससे नॉलेज प्राप्त करके हमें वो दवाई लेना है और हमारा जो डिसीज है उसको ख़त्म करना है। तो वैसे ही जो आचार्यों ने जो है सब पढ़ाई किया है, सब पढ़ा है पूर्व आचार्यों ने, अरे ब्रह्मा जी ने कहा है जो इस सृष्टि के निर्माता है उन्हें सब वेदा पढ़ा है, उनके 4 सिर है, 4 सिरों से 4 बार वेद पढ़ा है, उसका निष्कर्ष निकाला है कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है यही हाईएस्ट है जो है जो कलयुग के लिए। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग में जो तप करना, यज्ञ करना, मूर्ति पूजा करना, ये सब करके जो हमें मिलता था जो फल, उस सबका जो है पूरा बोलते कि उसका पूरा, जब आयुर्वेदिक दवाई रहता है तो डॉक्टर देते हैं, आप लोगों को पता रहेगा, वो काढ़ा बनाते हैं ना, बोलते 2 लीटर पानी में इतना एक पुड़ी डाल के उसको इतना बना दो, छोटा सा एकदम, एक 200 ml बना दो 2 लीटर को, कंडेंस कर दिया, तो वैसे ही वो पूरा तीनों युगों में जो जो करते हैं उसको सब कंडेंस करके भी किधर डाला है, हरे कृष्णा महामंत्र पूरा कंडेंस काढ़ा है वो, तो हमें उसको लेना है। तो हमारी जो भौतिक जो बीमारी है, जो कलयुग में जो पूरे कलमश है, उसका नाश हो जाएगा। तो इसलिए वो उसको जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमें जो कलयुग में और कोई सहारा नहीं है, क्योंकि ना यज्ञ कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना बड़ी पैमाने पे हम जो है मूर्ति पूजा कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल करके दिया है हमें, इतना सिंपल करके दिया तो भी लोगों को हम बताते हैं तो भी बोलते कि करेंगे, कभी करेंगे, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी जब जीना है बरसो। लेकिन हमें पता नहीं कि हम कब तक जीने वाले हैं, किसको पता है क्या, नहीं पता है। तो इसलिए जो है जब भी हमें पता चले कि ये जो हरि नाम हमें मिला है उसको हमें जो है उसको आत्मसात करना है, उसको हम रोज उसका रेगुलर जो है रेगुलरली हमें उसका जप करना है, तभी जो हम इस भौतिक संसार से जो है इसे हम छूट सकते हैं। तो ये जो धन है हरि नाम का, ये कौन लेके आए हैं, कृष्ण भगवान, वो जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं लेकिन उनके भक्त के रूप में आए हैं, राधा रानी का भाव लेके। तो जैसे भगवद गीता के अंत में भगवान बोलते हैं सर्व धर्म परित्याज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इशामी मा सुच। सर्व धर्म का परित्याग करो, मतलब किसका परित्याग, जो आलतू फालतू धर्म है उनका आप परित्याग करो। मामेक शरणं व्रज और मेरे शरण में आ जाओ, फिर मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इशामी मा सुच, सब पापों से मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, तुम घबराओ मत। ऐसा बोल के फिर भगवान अपने धाम चले गए। भगवत गीता में बोला 5000 साल पहले, फिर उनका लीला समाप्त हो गया, अपने धाम चले गए। फिर उन्होंने जाके सोचा कि अभी तो कलयुग चालू होने वाला है, तो कलयुग के लोग जो है कुछ करने वाले नहीं है, वो तो अपना जो मनगढ़ंत चीजें है वो करते रहने वाले है, तो ऐसा करते रहेंगे, धर्म का परित्याग नहीं करेंगे, सब धर्म का फालतू धर्मों का, और फिर मेरे शरण में नहीं आएंगे, तो फिर उनकी तो पापों से मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हमारे पापों से मुक्ति हो, क्योंकि हमारे वो पिता हैं, वो चाहते हैं कि हम वापस घर लौट आए, उनके पास लौट आए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो खुद के भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और एक टीचर की तरह हमें वो अभी सिखाने आए। जो 500 साल पहले मायापुर में उनका अवतार हुआ था, और उन्होंने जो है हरि नाम हमें सिखाने आए, ताकि हम, और उन्होंने कोई ये नहीं रखा है कि सर्वधर्म परित्याज्यम ऐसा कुछ भी, क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन नहीं रखा है, अनकंडीशन। जैसे भगवान का कंडीशन था, भगवान कृष्ण का वो कंडीशन नहीं है उनका। बोलते कि आप जिस स्थिति में हो, जैसे जो जिधर हो चलेगा, आप जैसे तप करने के लिए हमें जंगल जाना पड़ता है, यज्ञ करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, और प्रॉपर ब्राह्मण या ऐसे कोई उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए यज्ञ का सब पता होना चाहिए, मूर्ति पूजा करने के लिए भी बहुत सारे सुविधाएं, बहुत सारे मंत्र पढ़ना, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब करना सबसे ईजी है, किधर भी बैठे हैं, घर में बैठे, घर के बाहर बैठे, किधर भी बैठे, गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, माला निकाला और जब चालू किया, वैसे भी बोल सकते हैं, इतना ईजी करके दिया। तो फिर भी जो है कलयुग के जो हम जीव है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे स्कूल में देखते हैं हम लोग कि सब अलग अलग बुद्धि के लोग स्टूडेंट रहते हैं, कोई 90% वाला रहता है, कोई 70 वाला, कोई 50% वाला, और कोई उसको 35% भी मार्क्स नहीं मिलता है, तो 2-3 साल एक ही कक्षा में अटक जाता है। तो उनको क्या करते हैं फिर, जो कक्षा में अटक गए उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ना, ग्रेस मार्क देके आगे धक्का मार के अगली कक्षा में भेज देते हैं, तो उनके ऊपर वो मैनेजमेंट का करुणा है। तो वैसे सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग के जो लोग हैं वो बुद्धिमान है 90% वाले, और कलयुग का हमारा डफर बैच है जिसको 35 मार्क्स मिलना मुश्किल है। तो इसलिए भगवान आके हमें ग्रेस दे रहे हैं, किसका जैसे ग्रेस दे रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र का ये हमें ग्रेस है पूरा, कि इसको हम लेंगे तो हमारा जो है हम जन्म मुक्ति के चक्कर से बाहर जा सकते हैं, निकल सकते हैं। तो इसलिए हमें अपना बुद्धि लगा के उसको लेना है। मतलब स्टूडेंट को टीचर बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा औकात नहीं है पास होने का, तुम एक काम करो, सिर्फ एग्जाम सेंटर पे आ जाओ, उधर आंसर शीट रखा रहेगा, अपना नाम लिखो चले जाओ, पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या बोलता है, टीचर वो आंसर शीट घर पे लेके आओ, मैं एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आऊँगा। तो अभी उतना उसको सुविधा मिल रहा है। तो वैसे ही भक्त लोग आके हमारे घर तक आते हैं, गांव तक आते हैं, ऑफिसेस में जाते हैं, रोड पे जाते हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, ठीक है बाद में लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी ये उम्र नहीं है हमारा, अभी तो हमें बहुत कुछ मजा मस्ती करना है, बहुत कुछ चीज़ें बाकी है जीवन में, जब बूढ़े हो जाएंगे तब ये सब करेंगे, जब दिखना बंद हो जाएगा, जब चलने को नहीं होगा, तो ऐसे जब खुद को संभाल नहीं पाएंगे तभी भक्ति क्या करेंगे हम, जब खुद को ही हम संभाल नहीं पाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हम भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार जो है हमें जब भी पता चले भक्ति के बारे में हमें भक्ति करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को महावदन्नाय अवतार कहा गया है, कि बहुत दानशूर अवतार है वो, इतना दानशूर अवतार है भगवान चैतन्य महाप्रभु, जैसे जो बाकी कृष्ण जो है उन्होंने जो प्रेम भक्ति है भगवान की, जो प्रेम भक्ति है उसका जो पूरा सागर है उसका जो, उसको पूरा ताला लगा के गए थे, पूरा सील पैक करके, कि कोई उसको बिना भगवान को सरेंडर हुए, बिना उनको पूरे अलग अलग धर्मों को छोड़ के परित्याग करके पूरा उनके शरण में बिना आए वो नहीं मिलेगा, उनका कंडीशन था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो खुद कृष्णा है और नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है और बाकी जो पंच तत्व है, वो आके क्या किया, वो ताला को तोड़ दिया और तोड़ के पूरा वो जो भगवत प्रेम का भंडार है उसको खोल दिया और वो प्रेम को खुद पीने लगे और मदमस्त होके नाचने लगे और लोगों को ला ला के उसमें डुबाने लगे। लेकिन लोग भाग रहे फिर भी उनको ला ला के डुबा रहे उनमें कि लो ये पी लो, ये भगत भगवान का प्रेम है। और उन्होंने कभी देखा नहीं उच्च कौन है नीचा कौन है, ऐसा नहीं देखा कि ब्राह्मण को देना है, इसको नहीं देना है, उसको नहीं देना है, सबको दे रहे हैं, जो भी आ रहा है सबको ला ला के उसमें डुबा रहे हैं और उनको प्रेम भक्ति दे रहे हैं। इतना इजी करके दिया है भगवान ने, तो उसका हमें पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये महावदन्याय अवतार है भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो पहले देखा कि वो परमात्मा के रूप में हमारे साथ है करुणा करने के लिए, बाद में अलग अलग अवतार में आते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं, और सबसे श्रेष्ठ अवतार है चैतन्य महाप्रभु का महावदन्याय अवतार। उसमें आके वो इतना कुछ पूरा जो है हरि नाम के थ्रू जो है भगवान के जो प्रेम का पूरा उन्होंने भंडार खोल दिए है और पूरा ऐसा बाढ़ आ गया है। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, उसमें जाके डुबकी लगाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो समुन्द्र में नहीं जा रहे, हम जो है माया का जो समुन्द्र है भौतिक सागर है उसमें जाके हम गोते लगा रहे हैं और हमें इधर उधर से बहुत लाते भी पड़ रही है, लेकिन लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद लाते पड़ना बंद हो जाएगा और इस भौतिक संसार में हमें कुछ सुख मिलेगा। हम उसकी फिर भी आशा कर रहे हैं, बहुत आशा है हमें, लेकिन वो क्योंकि भगवान ने ऑल बोल के रखा है भगवद्गीता में कि ये संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ आपको दुख ही मिलने वाला है। दुखालय मतलब ग्रंथालय में क्या मिलता है, और दुग्धालय में दूध मिलेगा, और मदिरालय में क्या मिलेगा, और दुखालय में सुख दुख मिलेगा ना। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, जो कभी मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि सुख है नहीं, सुख है, हम चीज बराबर ढूंढ रहे हैं लेकिन गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। जैसे अगर रेगिस्तान में जाते हैं वहां पे वो दिखता है ना, क्या बोलते हैं, मुर्ग जल, दूर दिखते हैं तो ऐसा लगता है पानी है, पास में जाते हैं तो दिखता है रेती है उधर, तो फिर उधर कोई जो एनिमल है वो भागता है पानी के खोज में, बहुत प्यासा हो जाता है और पानी समझ के उस पूरा वो रेती खा लेता है तो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो वैसे ही हम इस दुनिया में ढूंढ रहे सुख को, लगता है बस अभी इतना कर लिया तो सुख आ जाएगा, बस इतना मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाएगा, मुझे मेरा इतना प्रमोशन हो जाएगा, बस मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा सोच रहे हैं और मुख जल के पीछे भाग रहे हैं, पास में जाते तो और तो आगे दिखता है, वैसे हम आगे आगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, पानी है लेकिन वहां पे नहीं है, वो रेगिस्तान में पानी नहीं है। तो वैसे सुख है लेकिन इस भौतिक संसार में सुख नहीं है, सुख कहाँ पे है, आध्यात्मिक संसार में, जहाँ पे भगवान है, आध्यात्मिक जगत में है, वहाँ पे वैकुंठ जो गोलोक वृंदावन है वहाँ पे जो है रियल सुख है। तो वो उसका हमें जाके उसके लिए हमें जो भक्ति करना है, जो भगवान ने जो मार्ग दिया है उसको हमें जो उसको आत्मसात करना है, तो वो भगवान की हमारे ऊपर करुणा है। फिर और हम देख सकते हैं कि जो भगवान है हमें भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इसके तरह अलग अलग ग्रंथों के रूप में भगवान आते हैं और उसमें जो है हमें ज्ञान मिलता है उससे कि हमें हमारे जीवन में क्या करना है। जैसे अलग अलग जो कोई गैजेट हम खरीदते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके पास साथ क्या आता है, पुस्तिका आता है ना, उसको कहते हैं यूजर्स मैनुअल, हमें कैसा यूज़ करना है। तो वैसे ही अपने ह्यूमन लाइफ को, जो मनुष्य का शरीर मिला है उसको हमें कैसे यूटिलाइजेशन करना है, उसका ज्ञान किसमें दिया है, भगवत गीता, वो मैनुअल है। तो आप लोगों में से कितने लोगों के पास भगवत गीता है, हाथ खड़ा कीजिए। एक तो बहुत कम लोगों के पास है और उसमें जो हाथ खड़ा किया सब लोग पढ़ते हैं। तो हमें अगर मैनुअल ही नहीं हमारे पास और होने के बाद हम पढ़ भी नहीं रहे हैं तो हमको दिशा कैसे मिलेगी अगर हमें मैनुअल नहीं है हमारे पास। तो जिनके पास नहीं है वो आज ही उसको खरीद लीजिए, नीचे गिफ्ट शॉप में मिलेगा। तो जो है भगवत गीता हमारे जीवन के लिए मैनुअल है, उसको हम पढ़ेंगे और जिनके पास है वो पढ़ाई चालू कीजिए। तो जो है भगवत गीता हमारे लिए मैनुअल है जीवन के लिए, तो उसको हमें पढ़ना चाहिए, तभी हमें जो जीवन का जो प्रॉपर डायरेक्शन है, जो रास्ता है, वो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में हमें करना क्या है। नहीं तो हम वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, अलग अलग माताओं के गर्भ में, अभी मनुष्य माता के गर्भ से हमने जन्म लिया है, बाद में कुत्ता माता, बिल्ली माता, पंछी माता, बहुत सारे माताएं अलग अलग जो योनियों में है उसमें से गर्भ से हमें जन्म लेना पड़ सकता है अगर हमने भगवान की बात नहीं मानी। तो जो है अलग अलग जो लिटरेचर है, जो धर्म ग्रंथ है उसमें से भगवान हमें जो है बताते हैं। फिर उसके बाद भगवान उनके भक्तों को भी भेजते हैं, जो बहुत सारे हम देखते हैं दुनिया में कि बहुत सारे संत आके गए हैं कि वो हमें जो है ज्ञान देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, जो भगवान ने उन्हें भेजा है और उन्होंने इस्कॉन संस्था का स्थापना किया है, और उन्होंने जो है उनके कारण अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने अगर ये प्रचार नहीं किया होता, उन्होंने अगर इस्कॉन की स्थापना नहीं की होती, तो हम यहाँ पे बैठे नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो भगवान जो है उनका भक्ति के बारे में बताने के लिए अलग अलग भक्तों को जो है हमारे बीच इधर संसार में, भौतिक संसार में भेजते हैं। और चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लजा लता बीज। तो हम अलग अलग ब्रह्मांडों में, अनगिनत ब्रह्मांड है, तो हम अलग अलग ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन करते करते गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण के प्रसाद से हमें भक्ति लता, भक्ति का जो लता है, जो लता को, लता मतलब पता है ना, जो पेड़ के ऐसे सपोर्ट लेके जो बढ़ती है, लता बोलती है उसको। तो भक्ति लता का बीज जो है हमारे हृदय में वो प्लांट करते हैं। गुरु का शरण लेंगे तो हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी, और कृष्ण के थ्रू हमें गुरु की प्राप्ति होगी। तो जब हम गुरु का और डिवोटी का शरण लेते हैं, तो हमें कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में पता चलता है, और हमें भक्ति लता बीज हमारे जो हृदय में है वो विकसित होती है, और फिर हम जो है ये भक्ति में आगे बढ़ के हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है उसको सार्थक कर सकते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, और इसमें चरित्र चंद्र अपने श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं कि कोटि ज्ञानी मध्य हय एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। जब कोटि कोटि ज्ञानी लोग है उसमें से एक आदमी मुक्त हो सकता है कोटि ज्ञानियों में, और ऐसे जो मुक्त होने वाला एक आदमी है, वैसे जब कोटि कोटि और आ जाएंगे तो उसमें से एक कृष्ण भक्त बन सकता है। तो उसको वापस भगवद गीता में भगवान बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी पुरुष मुझे शरण में आता है, और उसको समझ में आता है कि वासुदेव सब कारणों के कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वासुदेव सर्व कारणों के कारण है, और वो जो है वही मुझे इस संसार से मुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो भगवद गीता में बता रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे परमात्मा के रूप में, उसके बाद जो है उसके बाद अलग अलग अवतारों के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु का अवतार सबसे बड़ा है, और जो अलग अलग लिटरेचर है उसके रूप में, और भक्तों के रूप में भगवान जो है हमें करुणा दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान को एक करुणा के सागर कहा गया है, और इसलिए हमें जो है भगवान के करुणा का जो दे रहे उसका पूरा पूरा फायदा लेना है, तभी हमारा जो है मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय, जय करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रसिक गौर हरि प्रभु। प्रभु जी का हम तीन बार हरि बोल बोल के धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी 12 बजे, ठीक 12 बजे श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा। उसके पूर्व जो भी भक्त यहाँ पे पहली बार आए हैं, जो भी अतिथि पहली बार आए हैं, उनका हम समुचित स्वागत करना चाहेंगे। आप आपका कीमती समय निकालकर आज इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आए, इसलिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आज का यह दिन आपके उज्जवल कृष्ण भावनामय जीवन की अच्छी शुरुआत बने, और हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय के बीच में आप यहाँ पर आके हमको प्रेरित करते रहे। जो भक्त या अतिथि पहली बार आज इस संडे फिश कार्यक्रम में आए हैं, उनके लिए विशेष उपहार मंदिर की ओर से दिया जाएगा। तो कीर्तन के पश्चात अभी 12 से 12:30 बजे तक महाआरती और कीर्तन होगा। उसके पश्चात यहाँ पे हमारे स्वागत अध्यक्ष श्रीमान श्रीवल्लभ प्रभु और उनकी टीम आपको आपका उपहार भी देंगी, और आपके कुछ प्रश्न रहेंगे इस मंदिर की गतिविधियों के विषय में या इस्कॉन संस्था के विषय में, तो उसका समुचित उत्तर भी देंगे। तो हम आपसे विनती करते हैं कि कीर्तन के पश्चात उनसे मिलिए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाइए, अपना उपहार पाइए, और उसके पश्चात ही लंच प्रसाद के लिए प्रस्थान कीजिए। अभी श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा, उसमें आप डांसिंग कीर्तन करते हुए भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी। राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी। जय गौरणिताय, जय गौरणिताय, गौरणिताय, जय गौरणिताय। जय गौरणिताय, जय गौरणिताय, श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की। यशोमती नंदना ब्रजवरना गारा